विश्वनाथ कमरे में अकेला था। उसने अभी अभी दवाई ली थी, पर उसका चेहरा साफ बता रहा था उसका दिमाग कहीं और अटका हुआ है। वो बिस्तर से उठा, धीरे धीरे अलमारी की ओर गया और वहां से हल्के ग्रे रंग की कोट पैंट निकाल लिया। हाथों के कंपन अभी भी था, लेकिन इरादे बिल्कुल स्थिर। शर्ट पहनते वक्त उसके माथे पर हल्का सा दर्द उभरा, पर उसने परवाह नहीं की। वो तैयार हो रहा था कहीं जाने के लिए। अभी अस्पताल से आए सिर्फ एक दिन हुआ था। सारा परिवार खुश था कि वो घर पर है, पर वो जाने किस बेचैनी से घिरे हुआ था। उसी वक्त दरवाज़ा हड़बड़ाकर खुला। श्यामली। उसकी चेहरे पर चौंकने के सारे निशान साफ थे। वो दो कदम आगे बढ़ी और तुरंत बोली, ये क्या कर रहे हैं आप? कहाँ जा रहे हैं? उसकी आवाज़ में घबराहट भी थी और हल्की सी नाराज़गी भी, जैसे वो खुद समझ नहीं पा रही थी कि उसे किस बात का डर है। विश्वनाथ ने बस एक पल उसकी तरफ देखा, आंखें फीकी, थकी हुई, पर अंदर कुछ छिपाए हुए, और फिर सीधे बोला, सिर्फ मैं नहीं, तुम भी मेरे साथ चलोगी, रेडी हो जाओ। श्यामली वहीं खड़ी रह गई, पलकों के बीच एक खामोश सवाल छिपा हुआ, लेकिन कहाँ? उसने धीमे से पूछा, जैसे डर हो कि कहीं जवाब उसे हिला ना दे। विश्वनाथ ने कोई जवाब नहीं दिया, बस अपने हाथ से इशारा किया, जाओ, तैयार हो जाओ। उसका लहजा आदेश नहीं था, पर इतना भारी था कि उसके सवाल उसी के भीतर दब गए। श्यामली चुपचाप पीछे हट गई, कमरे से बाहर गई और कुछ ही मिनटों बाद हल्की गुलाबी सूती साड़ी में वापस आई, जिसे उसने जल्दी जल्दी पहनकर बस ठीक ठाक किया था। हवेली के बाहर कार तैयार। ड्राइवर पहले से कार लगा चुका था। इंजन की आवाज हवेली के सन्नाटे में अजीब सी बेचैनी पैदा कर रही थी। विश्वनाथ धीरे धीरे बाहर आया, चीफ हॉल में एक बार भी रुके बिना, किसी को बताए बिना। श्यामली उसके पीछे धीमे कदमों से, जैसे हर कदम पर सोचते हुए, क्या ये सही कर रही हूँ? ड्राइवर ने दरवाजा खोला, विश्वनाथ आगे की सीट पर बैठा, श्यामली पीछे। कार चल पड़ी। कार के अंदर भारी खामोशी। श्यामली खिड़की के बाहर देख रही थी। रास्तों के पेड़ तेजी से पीछे जा रहे थे, लेकिन उसके मन में सिर्फ एक सवाल घूम रहा था, अभी हॉस्पिटल को एक दिन भी नहीं हुआ, ये कहाँ जा रहे हैं और मुझे क्यों साथ ला रहे हैं? उसने कई बार सोचा कि पूछ ले, पर विश्वनाथ का चेहरा इतना सख्त और डूबा हुआ था कि वो बोल ही न सकी। विश्वनाथ भी एक बार भी उसकी तरफ नहीं देख रहा था, उसकी नज़रें बस आगे, शायद किसी मंजिल पर टिकी हुई, जिसकी वजह वो खुद भी डर रहा हूँ। कार पूरे रास्ते एकदम चुप रही। ड्राइवर को भी महसूस हो रहा था कि कुछ अनकहासा चल रहा है। सिर्फ इंजन की लगातार गूंज कार के अंदर भरती जा रही थी। श्यामली की हथेलियां पसीने से भीगने लगीं। वो अपनी साड़ी का पल्लू मुट्ठी में दबाए बैठी थी। उसे समझ नहीं आ रहा था किस बात का डर उसे खा रहा है। एक घंटे बाद कार मंजिल पर रुकती है। कार एक पुराने छोटे से रास्ते में मुड़ी, जहां दाएं बाएं छोटे छोटे घर थे। अंत में कार रुकी एक बेहद साधारण एक मंजिला घर के सामने। दीवारें हल्के नीले रंग की, लॉन छोटा सा और दरवाजे पर सूखे फूलों की माला लटकती हुई। घर ऐसा था जहां मुश्किल से तीन चार लोग रह सकते थे। विश्वनाथ ने ड्राइवर को निर्देश दिया, यहीं रुको। फिर वो कार से उतरे। श्यामली भी उतरी, थोड़ा डरते हुए, थोड़ा हिचकते हुए, पर वो कुछ नहीं बोली। विश्वनाथ के पीछे धीरे धीरे चलती रही। दरवाजा आधा खुला था। एक हल्की सी आवाज अंदर से आई, किसी महिला की, और फिर एक सफेद साड़ी में लिपटी मध्यम उम्र की औरत दरवाजे पर आई। उसके चेहरे पर थकान भी थी, चोट भी, और गुस्सा एकदम कड़वा सीधा। उसने विश्वनाथ को देखते ही आंखें सिकोड़ ली, जैसे किसी पुराने जख्म पर किसी ने हाथ रख दिया हो। हवा अचानक भारी हो गई। श्यामली का दिल थक से गिरा। वो उस औरत को देखकर हैरान रह गई। चेहरा अनजान था, पर नजरों में इतना गुस्सा कि श्यामली एक कदम पीछे हट गई। औरत ने बिना एक सेकंड गवाए धारदार आवाज में कहा, अब क्या लेने आए हैं आप? उसने अपने शब्दों को किसी नरमी में नहीं लपेटा, सीधा, कड़वा और आरोपों से भरा। श्यामली का गला सूख गया। विश्वनाथ उनके सामने बिल्कुल शांत खड़े थे, ना गुस्सा, ना तंज, ना सफाई, बस एक मौन, एक ऐसा मौन जो बहुत गहराई से आया था। ऐसा लगा जैसे ये बातचीत पहले भी कई बार हो चुकी है, और हर बार एक नए दर्द के साथ। श्यामली की आंखें विश्वनाथ और उस महिला के बीच घूमती रहीं। ये कौन है? विश्वनाथ इसे क्यों मिले? और इस औरत के स्वर में इतना जहर क्यों? वातावरण इतना भारी हो चुका था कि सांस लेना तक मुश्किल लगे। श्यामली कुछ कहना चाहती थी, पर शब्द उसके गले में ही फंस गए और ठीक इसी टकराव भरे, कड़वे, अनकहे सचों से भरे क्षण पर धीरे धीरे ठहर जाता है। कॉलेज 10:05, क्लासरूम, जहां दिखावा आसान और अंदर का तूफान छुपाना मुश्किल। आर्यन सीधे अपनी क्लास में पहुंचा, हल्की हलचल, बच्चे इधर उधर बातें करते हुए, और बीच में सबसे सामने वाली सीट पर अदिति पहले से बैठी थी, ब्लू टॉप में, जैसे उसने भी आज का रंग सोच समझकर चुना हो। उसने आर्यन को आते ही हाथ हिलाया, चेहरे पर वही चमक जो हमेशा उसे देखकर आ जाती थी। आर्यन ने हल्की मुस्कान देकर उसके बगल वाली सीट ले ली। यू लुक गुड, अदिति धीरे से बोली। थैंक यू, आर्यन ने नोटबुक खोलते हुए कहा, लेकिन उसकी आवाज में एक अजीब सी भारीपन थी। अदिति ने उसे ध्यान से देखा। तुम ठीक नहीं लग रहे, कल रात ठीक से सोए भी थे? आर्यन ने जवाब देने में एक सेकंड ज्यादा लिया। हाँ, बस थोड़ा सिर भारी है। अदिति ने उसकी कलाई पर हाथ रखा। मैं हूं ना, आज के बाद थोड़ी केयर मैं करूंगी तुम्हारी। आर्यन ने बस सिर हिलाया। उसके मन में उस एक लाइन ने चुभन पैदा की, मैं तुम्हारी केयर करूंगी। लेकिन रात वाला आंगन, शामली की कांपती हथेलियां, सब कुछ अंदर खिंचाया। क्लास शुरू हुई, प्रोफेसर की आवाज़ पूरे कमरे में फैल गई, लेकिन आर्यन की नज़रें बार बार बाहर के शीशे की तरफ चली जाती, जहां हवा में पत्ते हिल रहे थे, ठीक वैसे ही जैसे उसके भीतर सोचें एक दूसरे से टकरा रही थी। क्लास खत्म हुई तो अदिति ने कहा, चलो कैंटीन चलते हैं, मेरे पास तुमसे बात करनी है। आर्यन ने धीमे से कहा, हाँ चलते हैं, पर उसके चेहरे पर साफ था, वो कितना भी कोशिश कर ले, आज का दिन उसके दिल के भारीपन से बच नहीं पाएगा।